डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल की महत्वपूर्ण कृति, जो कि भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव के समय पर संपूर्ण देश में हुए अहिंसा संबंधी व्याख्यान का लिपिबद्ध सुसंपादित रूप है, जो आज भी न केवल जैन समाज में अपितु जैनेतर समाज में भी अत्यंत लोकप्रिय है, ऐसी अद्भुत कृति अहिंसा महावीर की दृष्टि में का ऑडियो संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत इस पुस्तक के ऑडियो संस्करण का निर्देशन किया है पंडित परमात्म प्रकाश भारिल जयपुर ने, सहयोग दिया है जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने, एवं स्वर दे रहे हैं पंडित अनुभव शास्त्री खनियाधाना। इस कृति का सम्यक अवलोकन कर संपूर्ण जगत अहिंसा का सम्यक स्वरूप समझे एवं जीवन में अपनाकर अनंत सुखी हो, इस पवित्र भावना से पाठकों के मध्य प्रस्तुत है अहिंसा महावीर की दृष्टि में। प्रस्तुत है डॉक्टर हुकमचंद भारिल द्वारा लिखित अहिंसा महावीर की दृष्टि में। मंगलाचरण। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस मंगलाचरण में भगवान महावीर वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि जैन मान्यतानुसार जो जीव एक बार सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है, वह लौटकर दोबारा संसार में नहीं आता। अतः कवि ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना को निष्फल नहीं होने देना चाहता है। जो वस्तु चली जाती है वह लौटकर दोबारा नहीं आती। जैसे हमारा बचपन चला गया, अब वह लौटकर नहीं आ सकता, पर वह हमारे ध्यान में तो आ ही सकता है, ज्ञान में तो आ ही सकता है। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप आंख बंद कर एक मिनट को विचार कीजिए कि जब आप 6वीं कक्षा में पढ़ते थे, होली के अवसर पर एक बार आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी की कुर्सी पर गद्दी के नीचे रख दिया था। जब मास्टर जी आए और कुर्सी पर बैठे तो गुब्बारा फटा और पानी का एक फव्वारा छूटा, साथ ही कक्षा में एक हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम ना हुई थी, पर जब आज उस घटना का स्मरण आता है तो फिर वही बचपन मचल उठता है। ऐसी कोई ना कोई घटना आपके बचपन में भी अवश्य घटी होगी। भाई, जो प्यारा बचपन चला गया वह तो लौटकर वापस आ नहीं सकता, फिर भी वह हमारे ध्यान में तो आता ही है, ज्ञान में तो आता ही है। ठीक इसी प्रकार भगवान महावीर भी, जो 2510 वर्ष पूर्व सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अब इस संसार में लौटकर वापस नहीं आ सकते, फिर भी हमारे ज्ञान में तो आ ही सकते हैं, ध्यान में तो आ ही सकते हैं। अतः यहां प्रार्थना की गई है कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आखिर क्यों? जबकि आज का जमाना इतना बेदर्द हो गया है कि मौत कोई मायना नहीं रखती। सड़क के किनारे कोई व्यक्ति मरा या अधमरा पड़ा हो तो उसे देखते हुए हजारों लोग निकल जाते हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि यदि यह मर गया है तो इसके घर वालों को खबर कर दें, यदि अधमरा है तो अस्पताल ही पहुंचा दें, शायद बच जावे। सब यों ही देखते हुए निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज का यह आदमी ना मालूम कितना बेरुखा हो गया है कि मौत का समाचार इसके हृदय को आंदोलित ही नहीं करता। प्रतिदिन प्रातःकाल लोग चाय पीते पीते समाचार पत्र पढ़ते हैं, मजे से चाय पीते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं कि बिहार में भयंकर बाढ़ आई है जिसमें 1,00,000 लोग मारे गए हैं और 10 लाख लोग बेघर बार हो गए हैं। यह समाचार पढ़ते समय इनका हाथ नहीं कांपता, इनके हाथ से चाय का प्याला नहीं छूटता, फूटता भी नहीं है। लोग बड़े ही मजे से चाय पीते जाते हैं और पड़ोसी को समाचार सुनाते जाते हैं कि सुना भाई साहब आपने, बिहार में भयंकर बाढ़ आई है, 1 लाख लोग मारे गए हैं और 10 लाख बेघर बार हो गए हैं। यह समाचार वे ऐसे चटकारे ले लेकर सुनाते हैं जैसे उनके नगर में कोई नया सर्कस आया हो और वे उसका समाचार सुना रहे हों। यह बात कहते हुए उनके चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं होता। तात्पर्य यह है कि आज के आदमी में मौत के प्रति संवेदनशीलता नहीं रही है जो एक जमाने में थी। भाई, एक जमाना वह था जब किसी मोहल्ले में यदि गाय मर जाती थी तो सारा मोहल्ला तब तक मुंह में पानी भी नहीं देता था जब तक कि गाय की लाश ना उठ जाए। और एक जमाना यह है कि शमशान में भी ठाट से चाय चलती है, लोग शव यात्रा में भी उसी ठाट बाट से जाते हैं कि जिससे पता ही नहीं चलता कि ये किसी की बारात में जा रहे हैं या शव यात्रा में। वैसी ही बातें, वैसी ही हंसी मजाक, वही राजनीतिक चर्चाएं। यदि क्रिकेट का मौसम चल रहा हो तो बहुतों के हाथ में ट्रांजिस्टर भी मिल जावेगा, स्कोर तो सभी पूछते ही हैं। न मालूम क्या हो गया है आज की इस दुनिया को। और की बात तो जाने दीजिए, सगे माँ बाप मरते हैं तो भी आज का आदमी उन्हें 3 दिन से अधिक याद नहीं रख पाता। आज मरे और कल तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन हुआ नहीं कि किसान खेत पर चला जाता है, कहता है बोनी का समय है, दुकानदार दुकान खोल लेता है, कहता है सीजन चल रहा है, नौकरी पेशा नौकरी पर चला जाता है, कहता है आकस्मिक अवकाश अर्थात CL बाकी नहीं रही। जो माँ बाप जीवन भर पाप करके संपत्ति जोड़ते हैं, पाप की गठरी अपने माथे बांधकर ले जाते हैं और कमाई बच्चों को छोड़ जाते हैं, जब वे बच्चे ही उन्हें 3 दिन से अधिक याद नहीं रख पाते तो और की क्या बात कहें। ऐसे संवेदनहीन बेदर्द जमाने में जिसने 2510 वर्ष पहले देह छोड़ी हो उसे हम 2510 वर्ष बाद भी याद करें, प्रार्थना करें कि वे वर्धमान महान जन विचरें हमारे ध्यान में। क्या तुक है इसमें? ऐसा क्या दिया था भगवान महावीर ने हमें जो हम 2510 वर्ष बाद भी याद करें, उनके गीत गावें? भौतिक रूप से तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया था, उनके पास था भी क्या जो हमें देते। वे तो नग्न दिगंबर थे, एक लंगोटी भी तो ना थी उनके पास। पर भाई साहब, भौतिक रूप से सब कुछ देने वालों को भी हम कहां याद रखते हैं? अभी बताया था ना कि जो माँ बाप हमें सर्वस्व दे जाते हैं हम उन्हें भी कितना याद रख पाते हैं। पर हम महावीर को याद तो करते ही हैं, लाखों लोग उनसे ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना तो करते ही हैं। ऐसा क्या दिया था उन्होंने हमें? क्योंकि यह स्वार्थी जगत बिना प्रयोजन तो किसी को कभी याद करता ही नहीं है। उन्होंने हमें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए थे, ऐसा मार्ग बताया था कि जिन्हें हम अपना लेवें, जिस पर हम चलें तो आज भी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने जो रास्ता 2500 वर्ष पहले बताया था, हो सकता है कि वह उस युग में किसी काम का रहा हो। पर आज दुनिया बहुत बदल गई है, कहां वह बैलगाड़ी का जमाना और कहां यह राकेटी दुनिया। 2500 वर्ष पुरानी बातें आज किस काम की? अतः वे लोग कहते हैं कि आज महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि महावीर आउट ऑफ डेट नहीं, आज भी एकदम अप टू डेट हैं। मेरी यह बात शायद उन लोगों को पसंद ना आए जो ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसे बाल कटाकर कि दूर से देखने पर पता ही ना चले कि लड़का है या लड़की, अपने को अप टू डेट समझते हैं। पर ध्यान रहे, कोई व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट नहीं होता, अपितु अपने विचारों से होता है। जो व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट बनेगा उसे एक ना एक दिन आउट ऑफ डेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है। मेरे पिताजी पगड़ी बांधा करते थे। जब वे दर्पण के सामने बैठकर पगड़ी बांधते थे तो एक घंटे से कम नहीं लगता था। इसी प्रकार जब पगड़ी बांधकर बाजार से निकलते थे तो अपने को कम अप टू डेट नहीं समझते थे। पर हमने पगड़ी छोड़ दी और टोपी लगाकर अपने को अप टू डेट समझने लगे। हमारे बच्चों ने टोपी भी फेंक दी और अप टू डेट हो गए, हमें आउट ऑफ डेट कर दिया। भाई, जो व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट बनेगा उसे एक ना एक दिन आउट ऑफ डेट होना ही होगा, और कोई नहीं, स्वयं के बच्चे ही उसे आउट ऑफ डेट कर देंगे। जब लोग पगड़ी बांधते थे तो लोग पगड़ियां उछाला करते थे, जब टोपियां लगाने लगे तो टोपियां उछलने लगी। पर आज ना लोग पगड़ी बांधते हैं ना टोपी लगाते हैं तो लोगों के बाल ही उड़ने लगे। आपने पुरुष तो गंजे बहुत देखे होंगे पर महिला एक भी गंजी नहीं देखी होगी। क्या आप जानते हैं कि पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं? महिलाओं के सिर पर उड़ने के लिए साड़ी का पल्लू सदा विद्यमान रहता है, पर पुरुषों के सिर पर उड़ने के लिए कोई बाहरी वस्तु देखने में नहीं आती, अतः उनके बाल ही उड़ने लगते हैं। अभी तो बाल ही उड़े हैं, जब बाल भी ना रहेंगे तो क्या उड़ेगा? यह समझने की बात है। अतः समझदारी इसी में है कि हमें ओढ़ने के लिए कोई एक बाहरी वस्तु सिर पर अवश्य रखनी चाहिए। जो भी हो, यह बात तो बीच में यूं ही आ गई थी। अपनी बात तो चल रही है कि कोई भी व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट नहीं होता, अपितु अपने विचारों से अप टू डेट होता है। यदि ड्रेस से अप टू डेट माने तब भी भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते, क्योंकि वे विदाउट ड्रेस थे। मैं धोती कुर्ता पहनता हूं और आप लोग सूट पैंट, पर यह अंतर तो मात्र ड्रेस का है। ड्रेस के भीतर विद्यमान शरीर तो सबका एक सा ही है। इस पर कोई कह सकता है कि शरीर में भी तो अंतर देखने में आता है कि कोई गोरा है, कोई काला, कोई मोटा है, कोई पतला, कोई लंबा है, कोई ठिगना। हां, शरीर में भी अंतर है, पर शरीर के भीतर विद्यमान भगवान आत्मा तो सबका एक जैसा ही है। भाई, जितना भेद दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है, वह सब ऊपर ऊपर का ही है। अंतर की गहराई में जाकर देखें तो एक महान समानता के दर्शन होंगे। हां, तो मूल बात तो यह है कि कोई व्यक्ति ड्रेस से महान नहीं होता है, अपितु अपने विचारों से महान होता है। भगवान महावीर ने अहिंसा का जो उपदेश आज से 2500 वर्ष पूर्व दिया था, उसकी जितनी आवश्यकता आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी, क्योंकि आज हिंसा ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। कहते हैं कि पहले लोग लाठियों और पत्थरों से लड़ा करते थे। लाठियों और पत्थरों से लड़ने वाले अस्पताल पहुंचते हैं, शमशान नहीं। तात्पर्य यह है कि वे घायल होते हैं, मरते नहीं। फिर तलवार का जमाना आया, पर तलवार की मार भी चार हाथ तक ही होती है। कोई व्यक्ति यदि 10-20 मीटर दूर हुआ तो तलवार बेकार है। फिर हमने और भी तरक्की की और गोलियां बना ली, पर वे गोलियां भी एक समय में एक आदमी को ही मार सकती थीं, तथा उनकी मारक क्षमता भी 100-200 मीटर तक ही थी। किंतु आज हमने ऐसी ऐसी गोलियां बना ली हैं कि एक गोली से चीन साफ हो जाए और दूसरी गोली से भारत। मारक क्षमता का भी इतना विकास कर लिया है कि अमेरिका अपने घर बैठे बैठे ही एक बटन दबाए तो चीन साफ और दूसरा बटन दबाए तो भारत साफ। और आप जानते हैं कि ये बटन दबाना भी किन लोगों के हाथ में है, जो दिन में 3-3 बोतल मदिरा पान करते हैं। भाई, जब हम गर्म पानी पीने वाले लोग भी इतना भ्रमित हो जाते हैं कि बिजली का बटन दबाना चाहते हैं और पंखा चल जाता है, भूल से बगल का बटन दब जाता है, तब उन 3-3 बोतल पीने वालों का क्या कहना? यदि उन्होंने चीन का बटन दबाने की सोची और भूल से भारत वाला बटन दब गया तो क्या होगा? हम सब लोग मुफ्त में ही मारे जावेंगे। कहते हैं कि अमेरिका ने इतनी विनाशक सामग्री तैयार कर ली है कि यदि वह चाहे तो दुनिया को 40 बार तबाह कर सकता है। रशिया भी आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि 25 बार दुनिया को तबाह तो वह भी कर सकता है। चीन भी आज इस स्थिति में है कि 5 बार दुनिया की सफाई कर दे। भाई, सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, आज भारत भी इस हालत में है कि एकाध बार तो यह काम वह भी निपटा सकता है, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दुनिया 71 बार बर्बाद हो ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब यह दुनिया एक बार बर्बाद हो जाएगी तो दोबारा बर्बाद होने को कुछ बचेगा ही नहीं। एक बार किसी दार्शनिक से पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, तो उन्होंने बताया कि तीसरे की बात तो मैं नहीं कह सकता, पर चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से ही लड़ा जाएगा। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह इतना भयानक होगा, इतना विनाशक होगा कि उसमें संपूर्ण दुनिया तबाह हो जावेगी और हम फिर उसी आदम युग में पहुंच जावेंगे जब लोग लाठियों और पत्थरों से लड़ा करते थे। अतः तीसरे विश्व युद्ध की बात सोचना भी भयानक अपराध है, सामूहिक आत्महत्या का प्रयास है। भाई, आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, कहीं से भी कोई एक चिंगारी उठे और सारी दुनिया क्षण भर में तबाह हो जाए, इस स्थिति में पहुंच गए हैं। आज हिंसा इतनी खतरनाक हो उठी है, अतः भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता भी आज जितनी है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। भाई, इसलिए तो मैं कहता हूं कि महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, अपितु एकदम अप टू डेट हैं। रामायण की लड़ाई 6 मास चली थी, पर उसमें मरने वालों की संख्या हजारों ही थी, लाखों नहीं। महाभारत की लड़ाई मात्र 18 दिन चली थी, उसमें भी मरने वालों की संख्या लाखों ही थी, करोड़ों नहीं। पर आज का असली युद्ध यदि 18 सेकंड ही चल जाए तो मरने वालों की संख्या हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों होगी, असंख्य होगी, अनंत होगी। पहले के जमाने में युद्ध के मैदान में सिपाही लड़ते थे और सिपाही ही मरते थे, पर आज का युद्ध सिपाहियों तक सीमित नहीं रह गया है, युद्ध मैदानों तक ही सीमित नहीं रह गया है, आज उसकी लपेट में सारी दुनिया आ गई है। आज की लड़ाइयों में मात्र सिपाही ही नहीं मरते, किसान भी मरते हैं, मजदूर भी मरते हैं, व्यापारी भी मरते हैं, खेत खलियान भी बर्बाद होते हैं, कल कारखाने भी नष्ट होते हैं, बाजार और दुकानें भी तबाह हो जाती हैं। अधिक क्या कहें, आज के इस युद्ध में अहिंसा की बात कहने वाले हम जैसे पंडित और साधु जन भी नहीं बचेंगे, मंदिर मस्जिद भी साफ हो जावेंगे। आज के युद्ध सर्व विनाशक हो गए हैं, आज हिंसा जितनी भयानक हो गई है भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता भी आज उतनी ही अधिक हो गई है। इस स्थिति में भगवान महावीर को आउट ऑफ डेट कहना, अनुपयोगी कहना कहां तक उचित है, यह विचारने की बात है। आज की लड़ाइयां बड़ी वीतरागी लड़ाइयां हो गई हैं। पहले की लड़ाइयों में मारने वालों को भी पता रहता था कि मैंने किसको मारा है और मरने वालों को भी पता रहता था कि मुझे कौन मार रहा है, पर आज ना मरने वालों को पता है कि मुझे कौन मार रहा है, ना मारने वालों को ही पता है कि मैं किसे मारने जा रहा हूं। ऊपर से राम बम फेंकता है और नीचे उसी का भाई लक्ष्मण मर जाता है और मंदिर साफ हो जाता है। ऊपर से रहीम बम फेंकता है और नीचे उसी का भाई करीम मर जाता है और मस्जिद साफ हो जाती है। ऊपर से हरमिंदर सिंह बम फेंकता है और नीचे उसी का भाई गुरमिंदर सिंह मर जाता है और गुरुद्वारा साफ हो जाता है। जब कोई किसी पर बम फेंकता है तो यह कोई नहीं कहता कि राम ने रहीम पर बम फेंका है, सभी यही कहते हैं कि अमेरिका ने जापान पर बम फेंका था। तात्पर्य यह है कि बमों की लड़ाई वस्तुतः व्यक्तियों की लड़ाई नहीं, देशों की लड़ाई है। व्यक्तियों की अपेक्षा देशों की लड़ाई अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह सामूहिक विनाश करती है। पहले की लड़ाइयां व्यक्तियों के बीच होती थीं, फिर परिवारों के बीच होने लगीं, उसके बाद जातियां लड़ने लगीं और आज देश लड़ते हैं। रामायण की लड़ाई 2 व्यक्तियों की लड़ाई थी, राम और रावण दोनों व्यक्ति ही तो थे। रामायण की लड़ाई राम और रावण की लड़ाई ही तो कहलाती है। फिर हम महाभारत के युग में आते हैं, तब तक परिवार लड़ने लगे थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव और पांडव किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं, परिवारों के नाम हैं। हम और आगे बढ़ें। सन 47 में हुए दंगे राम और रहीम के बीच नहीं, हिंदू मुसलमानों के बीच हुए थे। हिंदू और मुसलमान दो जातियां हैं। सन 1965 एवं 1971 में हुई लड़ाइयां श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खां और श्रीमती इंदिरा गांधी एवं याहिया खां के बीच नहीं लड़ी गई थी, अपितु ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए थे। भाई, जब व्यक्ति लड़ते हैं तो व्यक्ति बर्बाद होते हैं, जब परिवार लड़ते हैं तो परिवार बर्बाद होते हैं, जब जातियां लड़ती हैं तो जातियां बर्बाद होती हैं, और जब देश लड़ते हैं तो देश बर्बाद होते हैं। देश का अर्थ मात्र आदमी नहीं होता है, देश में आदमियों के साथ पशु पक्षी भी होते हैं, खेत खलियान भी होते हैं, कल कारखाने भी होते हैं और मंदिर मस्जिद भी होते हैं। देश बर्बाद होने का अर्थ है इन सभी का बर्बाद होना, विनाश होना। भाई, जहां अणुबम गिरता है वहां आदमी के साथ साथ पशु पक्षी भी मरते हैं, कीड़े मकोड़े भी मरते हैं, पेड़ पौधे भी नष्ट होते हैं। कहते तो यहां तक हैं कि जहां अणुबम गिरता है वहां की जमीन भी ऐसी हो जाती है कि हजार वर्ष तक घास भी ना होगे। भाई, आज हिंसा का भी राष्ट्रीयकरण हो गया है, वह भी अब व्यक्तिगत नहीं रही है। विनाश की इस प्रलयंकारी बाढ़ को रोकने में यदि कोई समर्थ है तो वह एकमात्र भगवान महावीर की अहिंसा ही है। अतः मैं कहता हूं कि भगवान महावीर की अहिंसा की जितनी आवश्यकता आज है उतनी भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए कहा जा सकता है कि भगवान महावीर आज भी अप टू डेट है। हम तो अच्छी तरह हिंदी भी नहीं जानते हैं, तो संस्कृत में लिखे ये पुराण कैसे पढ़ें? हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम इन्हें पूरा पढ़ सकें। अतः हमारे हित की बात हमें संक्षेप में समझाइए ना। उनकी बात सुनकर महाकवि व्यास बोले, भाई, ये 18 पुराण तो हमने हम जैसों के लिए ही बनाए हैं, तुम्हारे लिए तो मात्र इतना ही पर्याप्त है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में महाकवि व्यास ने मात्र दो ही बातें कही हैं कि यदि परोपकार करोगे तो पुण्य होगा और पर को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप होगा। मात्र इतना जान लो, इतना मान लो और सच्चे हृदय से जीवन में अपना लो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मानो इसी प्रकार भगवान महावीर के अनुयायी भी उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि महर्षि व्यास ने तो 18 पुराणों का सार दो पंक्तियों में बता दिया, आप भी जैन दर्शन का सार दो पंक्तियों में बता दीजिए ना। हमें भी ये प्राकृत संस्कृत में लिखे मोटे मोटे ग्रंथराज समयसार गोमटसार पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। मानो उत्तर में महावीर कहते हैं, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है, यही जिनागम का सार है। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, यह कहकर यहां भाव हिंसा पर विशेष बल दिया है, द्रव्य हिंसा की चर्चा तक नहीं की। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या महावीर द्रव्य हिंसा को हिंसा ही नहीं मानते? यदि मानते हैं तो फिर सीधे सच्चे शब्दों में यह क्यों नहीं कहते कि दुनिया में मारकाट होना हिंसा है और दुनिया में मारकाट का नहीं होना ही अहिंसा। यह हिंसा अहिंसा की सीधी सच्ची सरल परिभाषा है जो सबकी समझ में सरलता से आ सकती है। व्यर्थ ही वाकजाल में उलझाकर उसे दुरूह क्यों बनाया जाता है? भाई, ऐसी बात नहीं है। भगवान महावीर द्रव्य हिंसा को भी स्वीकार करते हैं, पर उनके आशय को हमें गहराई से समझना होगा। यह तो आप जानते ही हैं कि हिंसा तीन प्रकार से होती है, मन से, वचन से और काया से। काया की हिंसा को तो सरकार रोकती है। यदि कोई किसी को जान से मार दे तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, उस पर मुकदमा चलेगा और फांसी की सजा होगी। फांसी की सजा ना हुई तो आजीवन कारावास होगा। ना मारे पीटे तो भी पुलिस पकड़ेगी, मुकदमा चलेगा और 2-4 वर्ष की सजा होगी। पर यदि कोई किसी को वाणी से मारे अर्थात जान से मारने की धमकी दे, गालियां दे, भला बुरा कहे, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक बार मैं पुलिस थाने गया। वहां उपस्थित पुलिस इंस्पेक्टर से मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अमुक व्यक्ति मुझे जान से मारने की धमकी देता है, मुझे जान का खतरा है। तब वे बोले, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा, क्या कहा, आप क्या कर सकते हैं। अरे भाई, आप इंतजाम कीजिए, ऐसा कीजिए कि 2 सिपाही मेरे साथ कर दीजिए। वे मुस्कुराते हुए बोले, भाई यदि हर सामान्य व्यक्ति के साथ 2 पुलिस वाले लगाने लगे तो आप जानते हैं कि भारत में 60 करोड़ आदमी रहते हैं, अतः 1 अरब और 20 करोड़ पुलिस वाले चाहिए। बोलो इतनी पुलिस कहां से लाएं। मैंने कहा, यह तो आप ठीक ही कहते हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे तो जान का खतरा है। बड़ी ही गंभीरता से वे कहने लगे, ऐसा कीजिए, आप रिपोर्ट लिखा दीजिए। इस पर मैंने कहा, इससे क्या होगा। तब बड़े ही इत्मीनान से सिगरेट पीते हुए बोले, आप चिंता ना कीजिए, जब आपकी हत्या हो जाएगी तब उन्हें शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने घबराते हुए कहा, अच्छा इंतजाम है, मरने के बाद होगा, पहले कुछ नहीं हो सकता। मायूस से होते हुए वे कहने लगे, भाई हम क्या करें, आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत हम अपराध हुए बिना ही किसी को गिरफ्तार कर लें, सदा के लिए जेल में डाल दें। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि हम गंभीर शिकायत पर उनके जमानत मुचल के करा लें, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। आपकी शिकायत पर ना तो उन्हें हम गिरफ्तार करके सदा के लिए जेल ही में डाल सकते हैं और ना आपके साथ पुलिस वाले ही लगा सकते हैं। जब मैंने उक्त स्थिति पर गंभीरता से विचार किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कानून तो ठीक ही है, क्योंकि हम लोग वाणी से इतने हत्यारे हो गए हैं कि जिसने जीवन में एक भी जीव की हत्या ना की होगी, वह भी दिन में वाणी से 10-20 बार 10-20 की हत्या तो कर ही डालता है। बात बात में हम वाणी की हत्या पर उतर आते हैं, रेल में बैठे हों, मोटर में बैठे हों, पास बैठे आदमी से कहेंगे, भाई जरा उधर सरकना, मैं भी बैठ जाऊं। इस पर वह अकड़ जाएगा, फिर क्या है, आप भी कब पीछे रहने वाले हैं। जोर जोर से कहने लगते हैं, क्या तूने ही टिकट लिया है, हमने टिकट नहीं लिया क्या, चल हट, नहीं अभी ही खुदा को प्यारा हो जाएगा। बात बात में हर किसी को भगवान के पास भेजने की सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं, अब आप ही अपनी छाती पर हाथ रखकर बताइए कि यदि वाणी की हिंसा पर पुलिस कार्रवाई होने लगे तो हम और आप में से कौन जेल के बाहर रहेगा। चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जेलों में इतनी जगह ही नहीं है कि जहां वाणी के हत्यारों को रखा जाए। भाई ये माताएं बहनें हैं ना, बड़ी धर्मात्मा, इतनी धर्मात्मा कि प्रातःकाल उठेंगी तो स्वयं नहाएंगी, गाय को नहलाएंगी, बाल्टी को नहलाएंगी, उसमें निकला दूध पिएंगी। सोचो आप कितनी धर्मात्मा होंगी। माघ का महीना हो, भयंकर सर्दी पड़ रही हो, मां रसोई बना रही हो और उसका 2 वर्ष का बालक चौके के बाहर रो रहा हो, मां के पास जाना चाहता हो, पर मां कहती है, यदि मेरे पास चौके में आना हो तो कपड़े खोलकर आ, अन्यथा मेरा चौका अपवित्र हो जाएगा। बच्चा यदि कपड़े खोलता है तो निमोनिया हो जाने का अंदेशा है, और कपड़ा नहीं खोलता है तो मां के पास जाना संभव नहीं है। आखिर बेचारा करे तो क्या करे। अंत में होता यही है कि वह बालक चौके की सीमा रेखा का बार बार उसी प्रकार उल्लंघन करता है चौके की सीमा पर बार बार उसी प्रकार छेड़खानी करता है जिस प्रकार पाकिस्तान कश्मीर की सीमा पर किया करता है, तथा जिस प्रकार भारत सरकार बार बार कड़े विरोध पत्र भेजा करती है, उसी प्रकार वह धर्मात्मा माँ भी बार बार धमकियां दिया करती है कि यदि कपड़े खोले बिना चौके की सीमा में प्रवेश किया तो जिंदा जला दूंगी जिंदा। चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर बच्चे को बार बार दिखाती हुई धमकाती है, कहती है, देख यदि कपड़े खोले बिना अंदर पांव भी रखा तो समझ ले कि जिंदा जला दूंगी जिंदा। अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि यदि वह बच्चा पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाए कि मेरी माँ मुझे जिंदा जलाने की धमकी देती है, तो क्या पुलिस वाले उस माँ को भी गिरफ्तार कर लेंगे? शायद यह आपको भी स्वीकृत ना होगा। भाई, जो माँ अपने बच्चे को जिंदा जलाना तो दूर, यदि स्वप्न में भी उसकी मात्र अंगुली जलती देख ले तो बेहोश हो जाए। वह माँ भी जब वाणी से इतनी हत्यारी हो सकती है तो फिर दूसरों की क्या कहना। अतः कानून तो ठीक ही है कि वह वाणी की इस हिंसा की उपेक्षा ही करता है, पर बात यह है कि भले ही सरकार ना रोके पर वाणी की हिंसा भी रुकनी तो चाहिए ही। हाँ, रुकनी चाहिए, अवश्य रुकनी चाहिए। काया की हिंसा को सरकार रोकती है तो वाणी की हिंसा को समाज रोकता है। कैसे? जो लोग वाणी का सदुपयोग करते हैं समाज उनका सम्मान करता है, और जो दुरुपयोग करते हैं समाज उनका अपमान करता है। अपनी सज्जनता के खातिर अपमान ना भी करे तो भी कम से कम सम्मान तो नहीं करता। आप सब बड़े बड़े लोग नीचे बैठ गए हैं और मुझे यहां ऊपर गद्दी पर बिठा दिया है, क्यों? ऐसा क्यों किया आप सबने? इसलिए ना कि मैं आपको भगवान महावीर की अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। यदि मैं अभी यहीं बैठा बैठा स्पीकर पर ही आप सबको गालियां देने लगूं तो क्या होगा? क्या आप मुझे इतने सम्मान से दोबारा बुलाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। देखो ये आपके अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप दोबारा बुलाने की बात कर रहे हैं। अरे अभी तो अभी की सोचो कि अभी क्या होगा। भाई, जो व्यक्ति अपनी वाणी का सदुपयोग करता है समाज उसका सम्मान करता है, और जो दुरुपयोग करता है उसकी उपेक्षा या अपमान। इस प्रकार सम्मान के लोभ से एवं उपेक्षा या अपमान के भय से हम बहुत कुछ अपनी वाणी पर भी संयम रखते हैं। पर यदि मैं अभी यहीं बैठे बैठे आप सबको मन में गालियां देने लगूं तो मेरा क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेगी समाज और क्या कर लेगी सरकार? यही कारण है कि भगवान महावीर ने कहा कि न जहां सरकार का प्रवेश है और न जहां समाज की चलती है, धर्म का काम वहां से आरंभ होता है। अतः उन्होंने ठीक ही कहा है कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति ही हिंसा है, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। यही जिनागम का सार है। भगवान महावीर ने हिंसा अहिंसा की परिभाषा में आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया है, यह बात तो स्पष्ट हुई। ध्यान रहे, यहां समझाने के लिए आत्मा और मन को अभेद मानकर बात कही जा रही है। पहले हिंसा आत्मा अर्थात मन में उत्पन्न होती है। यदि क्रोधादि रूप हिंसा मन में ना समाए तो फिर वाणी में प्रकट होती है। यदि वाणी से भी काम ना चले तो काया में प्रस्फुटित होती है। हिंसा की उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी अपनी यह सभा शांति से चल रही है, पर यदि कुछ लोग इसमें उपद्रव करने लगे तो क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहां कोई उपद्रव होने वाला नहीं है। मैं तो अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मात्र उदाहरण दे रहा हूं। हां, तो आप बताइए कि यहां अभी उपद्रव होने लगे तो क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं। कुछ देर तो कुछ नहीं होगा। जब तक व्यवस्थापकों का क्रोध मन तक ही सीमित रहेगा तब तक तो कुछ नहीं होगा, पर जब क्रोध उनके मन में समाएगा नहीं तो मेरा व्याख्यान बंद हो जाएगा, और यह स्पीकर व्यवस्थापक महोदय के हाथ में होगा। वे लोगों से कहेंगे कि जिसको सुनना हो शांति से सुनिए, यदि नहीं सुनना है तो अपने घर चले जाएं, यहां उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इतने से भी काम न चले और उपद्रव बढ़ता ही चला जाए तो वे उत्तेजित होकर आदेश देने लगेंगे कि वॉलंटियरों, इन्हें बाहर निकाल दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रोधादि भावों रूप हिंसा की उत्पत्ति पहले मन में, फिर वचन में और उसके बाद काया में होती है। भगवान महावीर ने सोचा कि चोर से निपटने की अपेक्षा तो चोर की अम्मा से निपट लेना अधिक अच्छा है कि जिससे चोर की उत्पत्ति ही संभव ना रहे। यदि हिंसा मन में ही उत्पन्न ना होगी तो फिर वाणी और काया में प्रस्फुटित होने का प्रश्न ही उपस्थित ना होगा। अतः भगवान महावीर ने हिंसा के मूल पर प्रहार करना उचित समझा। यही कारण है कि वे कहते हैं कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। भाई, एक बात यह भी तो है कि यदि हिंसा एक बार किसी के मन में उत्पन्न हो गई तो फिर वह कहीं ना कहीं प्रकट अवश्य। एक मास्टर जी थे। यदि कोई मास्टर जी यहां बैठे हों तो नाराज मत होना। वैसे मैं भी तो मास्टर ही हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। हां, तो एक मास्टर जी थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज रोटी जरा जल्दी बनाना, मुझे स्कूल जल्दी जाना है। मास्टरनी बोली, आज रोटी जल्दी नहीं बन सकती क्योंकि जयपुर से एक दुबले पतले से पंडित आए हैं, मैं तो उनका प्रवचन सुनने जाऊंगी। मास्टर जी गर्म होते हुए बोले, मैं कुछ नहीं समझता, रोटी जल्दी बननी चाहिए। बेचारी मास्टरनी घबरा गई, आधा प्रवचन छोड़कर आई, जल्दी जल्दी रोटी बनाई, पर जब तक रोटी बनती तब तक मास्टर जी का माथा मास्टरनी के तवे से भी अधिक गर्म हो गया था और रोटी बन जाने पर भी मास्टर जी बिना रोटी खा ही स्कूल चले गए। अब आप ही बताइए कि मास्टरनी को कितना गुस्सा आया होगा। प्रवचन भी छूटा और मास्टर जी भी भूखे गए, पर क्या करे, मास्टर जी तो चले गए, घर पर बेचारे बच्चे थे, उसने उनकी धुनाई शुरू कर दी। गुस्सा तो मास्टर जी को भी कम नहीं आ रहा था क्योंकि भूखे थे ना, पर स्कूल में ना तो मास्टरनी ही थी और ना घर के बच्चे, पराए बच्चे थे, उन्होंने उनकी धुनाई आरंभ कर दी। भाई, यदि हिंसा एक बार आत्मा में, मन में उत्पन्न हो गई तो फिर वह कहीं ना कहीं प्रकट अवश्य होगी। अतः भगवान महावीर ने कहा कि बात ऐसी होनी चाहिए कि हिंसा लोगों के मन में, आत्मा में ही उत्पन्न ना हो। यही विचार कर उन्होंने हिंसा अहिंसा की परिभाषा में यह कहा कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण वर्ष था। सारे भारतवर्ष में निर्वाण महोत्सव के कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चल रहे थे। भगवान महावीर का धर्म चक्र एवं 1000 यात्रियों को साथ लेकर हम भी सारे देश में भगवान महावीर का संदेश देते फिर रहे थे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के सभी तीर्थों की 3 मास तक यात्रा करते हुए अंत में गुजरात पहुंचे। वहां की एक सभा में भगवान महावीर के इसी अहिंसा संदेश को हम जनता जनार्दन तक पहुंचा रहे थे कि अध्यक्ष पद पर विराजमान महानुभव बोले, यह तो ठीक, पर आप तो यह बताइए कि यह हिंसा रुके कैसे। हमने कहा, हां बताते हैं, यह भी बताते हैं, सुनिए तो सही। इस गुजरात प्रांत में शराबबंदी लागू है, फिर भी लोग शराब तो पीते ही हैं। अब आप ही बताइए कि यह शराबबंदी सफल कैसे हो। हमने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा कि एक उपाय तो यह है कि बाजार में कोई व्यक्ति शराब पीकर डोलता हो तो उसे पुलिस वाले पकड़ लें, 2-4 चांटे मारें, जेब में 10-20 रुपए हों, उन्हें छीन कर छुट्टी कर दें, तो क्या शराबबंदी सफल हो जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। तो क्या करना होगा? जब तक उन होटलों पर छापा नहीं मारा जाएगा जिन होटलों में अवैध शराब बिकती है, तब तक सफलता मिलना संभव नहीं है। हां, यह बात तो ठीक है, पर पुलिस उन होटलों पर छापा मारे, 10-20 बोतल शराब मिले, मिल बांटकर उसे पी लें और 200-400 रुपए लेकर उसकी छुट्टी कर दें, तो भी क्या शराबबंदी सफल हो जाएगी? नहीं, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या करना होगा? जब तक उन अड्डों को बर्बाद नहीं किया जाएगा, नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जाएगा जिन अड्डों पर लुक छिपकर यह अवैध शराब बनाई जाती है, तब तक सफलता मिलना असंभव ही है। क्योंकि यदि अड्डों पर शराब बनेगी तो मार्केट में आएगी, आएगी अवश्य आएगी, जाएगी कहां? जब मार्केट में आएगी तो लोगों के पेट में भी जाएगी, अन्यथा जाएगी कहां? जब लोगों के पेट में जाएगी तो उनके माथे में भी भन्नाएगी ही। यदि हम चाहते हैं कि शराब लोगों के माथे में न भन्नाए, तो हमें इंतजाम करना होगा कि वह लोगों के पेट में ना जाए। यदि हम चाहते हैं कि शराब लोगों के पेट में ना जाए, तो हमें इंतजाम करना होगा कि वह मार्केट में ना आए। यदि हम चाहते हैं कि वह मार्केट में ना आए, तो हमें इंतजाम करना होगा कि वह बने ही नहीं। भाई, इतना किए बिना काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हिंसा प्रस्फुटित ही ना हो, तो हमें उसे आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर ही रोकना होगा। क्योंकि यदि आत्मा या मन के स्तर पर हिंसा उत्पन्न हो गई, तो वह वाणी और काया के स्तर पर भी प्रस्फुटित होगी ही। यही कारण है कि भगवान महावीर बात की तह में जाकर बात करते हैं और कहते हैं कि यदि हिंसा को रोकना है तो उसे आत्मा और मन के स्तर पर ही रोकना होगा। जब तक लोगों के दिल साफ नहीं होंगे, जब तक लोगों की आत्मा में निर्मलता नहीं होगी, तब तक हिंसा के अविरल प्रवाह को रोकना संभव ना होगा। यह बात तो यह हुई कि हिंसा अहिंसा की परिभाषा में आत्मा शब्द का उपयोग क्यों किया गया है, पर अब बात यह है कि भगवान महावीर रागादि भावों की उत्पत्ति को ही हिंसा कह रहे हैं। भाई, जिस राग भाव अर्थात प्रेम भाव को सारा जगत अहिंसा माने बैठा है, भगवान महावीर उस राग भाव को ही हिंसा बता रहे हैं। बात जरा खतरनाक है, अतः सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। जैन दर्शन में प्रतिपादित अहिंसा की इस विशेषता के कारण कहा जाता रहा है कि अन्य दर्शनों की अहिंसा जहां समाप्त होती है, जैन दर्शन की अहिंसा वहां से आरंभ होती है। सारी दुनिया कहती है कि प्रेम से रहो, और महावीर कहते हैं कि यह प्रेम, यह राग भी हिंसा है। है ना अद्भुत बात? पर सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, बात को गहराई से समझना होगा। ना तो इस बात से असहमत होकर उपेक्षा करने से ही बात बनेगी, और ना बिना समझे स्वीकार कर लेने से कुछ होने वाला है। बात को बड़े ही धैर्य से, गहराई से समझना होगा। सुनो, डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, कलम के और मलम के। शोध खोज करने वाले पीएचडी आदि कलम के डॉक्टर हैं, और ऑपरेशन करने वाले मलम के डॉक्टर हैं। जब कोई मलम का डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, तो मरीज होता है एक और डॉक्टर होते हैं कम से कम दो, तथा चार नर्सें भी साथ होती हैं। मरीज रहता है बेहोश और डॉक्टर रहते हैं होश में। अतः ऑपरेशन के समय यदि मरीज मर जाए, तो संपूर्ण जिम्मेदारी एक प्रकार से डॉक्टर की ही होती है। पर जब वाणी का डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो डॉक्टर होता है अकेला और मरीज होते हैं हजार, दो हजार, दस पांच हजार भी हो सकते हैं। डॉक्टर के साथ मरीज भी पूरे होश में रहते हैं। अतः यदि कोई हानि हो, तो मरीज और डॉक्टर दोनों की समान रूप से जिम्मेदारी रहती है। डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा हो, मरीज की बेहोशी उतनी गहरी ना हो जितना गहरा ऑपरेशन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में कदाचित मरीज को ऑपरेशन के बीच में ही होश आ जाए, तो क्या होगा? सोचा है कभी आपने? यदि मरीज डरपोक हुआ, तो ऑपरेशन की टेबल से भागने की कोशिश करेगा, और यदि क्रोधी हुआ तो डॉक्टर को भी भगा सकता है। पर ध्यान रहे, ऐसी हालत में चाहे मरीज भागे चाहे डॉक्टर को भगाए, मरेगा मरीज ही, डॉक्टर मरने वाला नहीं है। अतः भला इसी में है कि जो भी हो, तब तक चुपचाप लेटे रहने में ही मरीज का लाभ है, जब तक कि ऑपरेशन होकर टांके ना लग जाएं, लग ही ना जाएं, अपितु लगकर सूखकर डॉक्टर द्वारा खोल ना दिए जाएं। भाई, यह कहकर कि रागादि भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, प्रेम भाव भी हिंसा ही है, मैंने आप सबका पेट चीर दिया है। यह सुनकर किसी को अरुचि उत्पन्न हो सकती है, किसी को क्रोध भी आ सकता है, कोई सभा छोड़कर भी जा सकता है, कोई ताकतवर मेरा बोलना भी बंद करा सकता है। पर ध्यान रहे, चाहे आप भागें चाहे मुझे भगा दें, नुकसान आपका ही होगा, मेरा नहीं। अतः भला इसी में है कि अब आप चुपचाप शांति से तब तक बैठे रहें जब तक कि बात पूरी तरह साफ ना हो जाए, स्पष्ट ना हो जाए। हां तो भाई, बात यह है कि महावीर राग भाव को, प्रेम भाव को भी हिंसा कहते हैं। भाई, जिसे तुम प्रेम से रहना कहते हो, शांति से रहना कहते हो, वह प्रेम ही तो अशांति का वास्तविक जनक है, हिंसा का मूल है। यह तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में सर्वाधिक द्रव्य हिंसा युद्धों में ही होती है, और युद्ध तीन कारणों से ही होते रहे हैं। वे तीन कारण हैं जर, जोरू और जमीन। जर माने रुपया पैसा, धन संपत्ति, जोरू माने पत्नी, स्त्री, और जमीन तो आप जानते ही हैं। रामायण का युद्ध जोरू के कारण ही हुआ था। राम की पत्नी को रावण हर ले गया और रामायण का प्रसिद्ध युद्ध हो गया। इसी प्रकार महाभारत का युद्ध जमीन के कारण हुआ था। पांडवों ने कौरवों से कहा, यदि आप हमें 5 गांव भी दे दें तो हम अपना काम चला लेंगे। पर कौरवों ने उत्तर दिया, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिल सकती। बस फिर क्या था, महाभारत मच गया। पैसे के कारण भी युद्ध होता है, यह बात सिद्ध करने के लिए भी क्या पुराणों की गाथाएं खोजनी होंगी, इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, विशेषकर व्यापारियों की सभा में, जिनकी सारी लड़ाइयां पैसों के पीछे ही होती हैं, जिनका मौलिक सिद्धांत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। भाई, यह आपकी ही बात नहीं है, आज तो सारी दुनिया ही व्यापारी हो गई है। डॉक्टरी जैसा सेवा का काम भी आज व्यापार हो गया है। धर्म के नाम पर भी अनेक दुकानें खुल गई हैं। आज तो सभी लड़ाइयां व्यापार के लिए ही लड़ी जाती हैं। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण भी उस देश में अपना व्यापार स्थापित करने के लिए ही करता है। बड़े देश छोटे देशों को हथियार बेचने के लिए उन्हें आपस में भिड़ाते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जगत में जितने भी युद्ध होते हैं, वे प्रायः जर, जोरू और जमीन के कारण ही होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जर, जोरू और जमीन के कारण जो युद्ध होते हैं, वे जर, जोरू और जमीन के प्रति राग के कारण होते हैं या द्वेष के कारण? यह बात तो हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट है कि जर, जोरू और जमीन के प्रति राग के कारण ही युद्ध होते हैं, द्वेष के कारण नहीं। रामायण के युद्ध के संदर्भ में विचार करें तो श्री रामचंद्र जी को तो महारानी सीता से अगाध स्नेह था ही, पर रावण को भी द्वेष नहीं था। यदि द्वेष होता तो वह सीता जी का हरण ना करता, उन्हें घर ना ले जाता, सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता, स्वयं को स्वीकार कर लेने के लिए प्रार्थनाएं ना करता और इस प्रकार के प्रलोभन नहीं देता कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, मंदोदरी से भी अधिक सम्मान दूंगा। यह सब उसके राग को ही सूचित करता है, द्वेष को नहीं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राग का ही परिणाम हो सकती है, द्वेष का नहीं। यद्यपि यह सत्य है कि रावण का यह प्रेम वासनाजन्य परिस्त्री प्रेम होने से सर्वथा अनुचित है, पर है तो प्रेम ही, राग ही। अतः सहज ही सिद्ध है कि रामायण का युद्ध नारी के प्रति प्रेम के कारण ही हुआ था, नारी के प्रति राग के कारण ही हुआ था। इसी प्रकार कौरवों को तो जमीन से राग था ही, पर पांडवों को भी जमीन से राग ही था, द्वेष नहीं, अन्यथा वे 5 गांव भी क्यों मांगते। इस पर आप कह सकते हैं कि आप क्या बात करते हैं, वे बेचारे रहते कहां? पर मैं कहता हूं कि रहने के लिए गांवों की क्या आवश्यकता है। मेरे पास तो 1 इंच जमीन भी नहीं है, पर मैं तो बड़े आराम से रह रहा हूं, उन्हें गांवों की क्या आवश्यकता थी? वनवास के काल में भी तो वे 12 वर्ष तक बिना गांवों के रह रहे थे, आखिर अब क्या आवश्यकता आ पड़ी थी जो गांव मांगने लगे, और ना मिलने पर युद्ध पर उतारू हो गए। पर भाई साहब, सच्ची बात तो यह है कि उनके मन में भी राग था कि ना सही चक्रवर्ती सम्राट, पांच गांव के जमींदार ही बन जावेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत की लड़ाई भी जमीन के प्रति राग के कारण ही लड़ी गई थी। पैसों के पीछे जो लड़ाइयां होती हैं, वे भी पैसों के प्रति राग के कारण ही होती हैं, द्वेष के कारण नहीं। अतः यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि युद्धों में होने वाली सर्वाधिक द्रव्य हिंसा के मूल में राग ही कार्य करता है। यही कारण है कि भगवान महावीर ने रागादि भावों की उत्पत्ति को हिंसा कहा है और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होने को अहिंसा घोषित किया है। मात्र युद्धों में होने वाली हिंसा ही नहीं, अपितु खान पान एवं भोग विलास में होने वाली हिंसा के मूल में भी मुख्य रूप से राग ही कार्य करता है। मांसभक्षी लोग उसी प्राणी का मांस खाते हैं जिनका मांस उन्हें अच्छा लगता है। प्रिय भोजन में प्राणियों का सहज अनुराग ही देखा जाता है, द्वेष नहीं। अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण के मूल में भी लोलुपता अर्थात राग ही कार्य करता है। लोग व्यर्थ ही कहते हैं कि बिल्ली को चूहे से जन्मजात वैर है, पर यह कैसे संभव है? क्या किसी को अपनी प्रिय भोज्य सामग्री से भी वैर होता है? बिल्ली तो चूहे को बड़े चाव से खाती है। आप ही बताइए कि आपको शुद्ध सात्विक प्रिय आहार से द्वेष है जो आप उसे चबाकर खा जाते हैं? भाई, जिस प्रकार आप अपने योग्य शुद्ध सात्विक प्रिय खाद्य पदार्थों को प्रेम से खाते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणी अपनी अपनी भोज्य सामग्री का रागवश ही उपभोग करते हैं। अतः यह सहज ही सिद्ध होता है कि खान पान संबंधी हिंसा में भी राग ही मूल कारण है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के भोग भी राग के कारण ही भोगे जाते हैं। क्रूरतम हिंसा से उत्पन्न श्रृंगार सामग्रियों के उपयोग के मूल में भी राग ही कार्यकर्ता देखा जाता है। जिंदा पशुओं की चमड़ी उतारकर बनाई गई चमड़े की वस्तुओं का उपयोग भी अज्ञानी जीव प्रेम से ही करते हैं, उनके प्रति आकर्षण का कारण राग ही है। रेशम के कीड़ों को उबालकर बनाई जाने वाली रेशम की साड़ियां भी महिलाएं रागवश ही पहनती हैं। भाई, अधिक क्या कहें, अकेली हिंसा ही नहीं, पांचों पापों का मूल कारण एकमात्र राग भाव ही है। लोभ रूप राग के कारण ही लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं। झूठ बोलकर लोगों को ठगने वाले लोग पैसे के प्रति ममता के कारण ही तो ऐसा करते हैं। चोर सेठ जी की तिजोरी उसमें रखे पैसों के लोभ के कारण ही तोड़ता है, सेठ जी के प्रति द्वेष के कारण नहीं। यदि उसे सेठ से द्वेष होता तो वह सेठ जी की तिजोरी नहीं तोड़ता, खोपड़ी खोलता। इसी प्रकार समस्त बाह्य परिग्रह जोड़ने के मूल में बाह्य वस्तुओं के प्रति राग ही कार्य करता है। माता बहनों की इज्जत भी रागी ही लूटते हैं, द्वेषी नहीं। इतिहास उठाकर देख लो, आज तक जितनी भी माता बहनों की इज्जत लूटी है वह रागियों ने ही लूटी है, द्वेषियों ने नहीं। आप प्रतिदिन प्रातःकाल समाचार पत्र पढ़ते हैं, उनमें यह लिखा तो मिलता है कि एक गोरी भोरी सुंदर युवती क्रीम पाउडर लपेटे, तंग वस्त्र पहने, हंसती खेलती तितली सी बनी बाजार में जा रही थी, तो कुछ कॉलेजी लड़कों ने उससे छेड़खानी की। पर आपने यह कभी नहीं पढ़ा होगा कि एक काली कलूटी सफेद बालों वाली घिनौनी सी गंदी लड़की रोती रोती सड़क पर जा रही थी और उससे किसी ने छेड़खानी की। भाई, छेड़खानी का पात्र भी वही होता है जिसे देखकर हमें राग उत्पन्न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि पांचों पापों की मूल जड़ एकमात्र राग भाव ही है। यही कारण है कि कविवर पंडित दौलत राम जी छह ढाला में लिखते हैं, यह राग आग दहे सदा तातें समामृत सेइये, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेइये। भाई, यह राग तो ऐसी आग है जो सदा जलाती ही है। जिस प्रकार आग सर्दियों में जलाती है, गर्मियों में जलाती है, दिन को जलाती है, रात को जलाती है, सदा जलाती ही है, उसी प्रकार यह राग भी सदा दुखी देता है। जिस प्रकार आग चाहे नीम की हो चाहे चंदन की, पर आग तो जलाने का ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि नीम की आग जलाए और चंदन की आग ठंडक पहुंचाए। भाई, चंदन भले ही शीतल हो, शीतलता पहुंचाता हो, पर चंदन की आग तो जलाने का ही काम करेगी। भाई, आग तो आग है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वह नीम की है या चंदन की। उसी प्रकार राग चाहे अपनों के प्रति हो या परायों के प्रति हो, चाहे अच्छे लोगों के प्रति हो या बुरे लोगों के प्रति हो, पर है तो वह हिंसा ही, बुरा ही। ऐसा नहीं है कि अपनों के प्रति होने वाला राग अच्छा हो और परायों के प्रति होने वाला राग बुरा हो, अथवा अच्छे लोगों के प्रति होने वाला राग अच्छा हो और बुरे लोगों के प्रति होने वाला राग बुरा हो। अच्छे लोगों के प्रति भी किया गया राग भी हिंसा होने से बुरा ही है। भाई, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। भगवान महावीर की यह अद्भुत बात जैन दर्शन का अनोखा अनुसंधान है। जब तक इस बात को गहराई से नहीं समझा जाएगा, तब तक महावीर की अहिंसा समझ में आना संभव नहीं है। भाई, भगवान महावीर ने रागादि भावों की उत्पत्ति मात्र को हिंसा बताकर एक अद्भुत रहस्य का उद्घाटन किया है। अपनी पुरानी मान्यताओं को एक ओर रखकर पवित्र हृदय से यदि समझने का प्रयास किया जाए, तो इस अद्भुत रहस्य को भी समझा जा सकता है, पाया जा सकता है, अपनाया जा सकता है और जीवन में जिया भी जा सकता है। यदि हम यह कर सके तो सहज सुख शांति को भी सहज ही उपलब्ध कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। राग के अतिरिक्त द्वेषादि के कारण भी जो हिंसा होती देखी जाती है, उसके भी मूल में जाकर देखें तो उसका कारण भी राग ही दृष्टिगोचर होगा। हम इस बात पर गहराई से विचार करें कि जिस द्वेष के कारण यह द्रव्य हिंसा हुई है, वह द्वेष किस कारण से उत्पन्न हुआ था, तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि जिस व्यक्ति से हमें राग था, उसके प्रति असद व्यवहार के कारण, अथवा जिस वस्तु से हमें अनुराग था, उस वस्तु की प्राप्ति में बाधक होने के कारण ही वह द्वेष उत्पन्न हुआ था। यदि कोई व्यक्ति हमारे परोपकारी गुरु की निंदा करता है या हम पर सर्वस्व लुटाने वाले माँ बाप से असद व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति से हमें सहज ही द्वेष भाव हो जाता है। यदि उस व्यक्ति के प्रति हमसे कोई हिंसात्मक व्यवहार होता है, तो उसे हम द्वेष मूलक हिंसा कहेंगे। पर गहराई में जाकर विचार करें तो स्पष्ट ही प्रतीत होगा कि हमारे इस हिंसात्मक व्यवहार के पीछे वह राग ही कार्य कर रहा है, जो हमारे हृदय में हमारे गुरु या माता पिता के प्रति विद्यमान है। इस तरह गहराई में जाकर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि द्वेष मूलक हिंसा भी मूलतः राग मूलक ही है। यद्यपि राग शब्द बहुत व्यापक है, उसमें आत्मा में उत्पन्न होने वाले सभी विकारी भाव समाहित हो जाते हैं, मिथ्यात्व सहित संपूर्ण मोह को, जिसमें द्वेष भी सम्मिलित है, राग कहा जाता है। तथापि यहाँ राग शब्द के साथ आदि शब्द का प्रयोग करके द्वेषादि विकारों का पृथक रूप से भी संकेत कर दिया है। यदि कोई कहे कि रागादि के स्थान पर द्वेषादि शब्द का प्रयोग किया जाता, तो कोई विवाद नहीं रहता, क्योंकि द्वेष को तो हिंसा का कारण सभी मानते हैं। ऐसी स्थिति में राग आदि शब्द में समाहित हो ही जाता। इस तरह हम अपनी बात भी रख देते और दुनिया को वह खटकती भी नहीं। अरे भाई, यदि राग शब्द का उल्लेख स्पष्ट रूप से न होता, तो राग में धर्म मानने वाले लोग उसे हिंसा स्वीकार ही न करते, अतः बात अस्पष्ट ही रह जाती। यही कारण है कि राग शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और द्वेषादि को आदि शब्द में समाहित किया गया है। वक्र और जड़ शिष्य संकेतों की भाषा से नहीं समझते, उनके लिए तो जितनी अधिक स्पष्टता की जाए उतनी ही कम है। इतनी सावधानी रखने पर भी लोग यह कहते देखे जाते हैं कि राग से तात्पर्य मात्र अशुभ राग से है, तीव्र राग से है, शुभ राग से मंद राग से नहीं। पर भाई, इतना तो सोचो कि जब भगवान महावीर ने हिंसा की परिभाषा में राग शब्द का प्रयोग किया होगा, क्या तब उन्हें उसके व्यापक अर्थ का ध्यान न रहा होगा? क्या वे यह नहीं जानते होंगे कि राग दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ अथवा मंद और तीव्र? इस पर कुछ लोग कहते हैं कि विषय कषाय का राग हिंसा है। यह तो ठीक है, पर धर्मानुराग को हिंसा कैसे कहा जा सकता है? भाई, राग तो राग है, वह किसके प्रति है इससे उसके रागपने में क्या अंतर पड़ता है? जिस धर्मानुराग को तुम हिंसा की परिधि से बाहर रखना चाहते हो, उसी धर्मानुराग ने विश्व में कितनी खून की नदियां बहाई हैं, क्या इसकी जानकारी नहीं है आपको? इतिहास के पन्ने पलटकर तो देखो, धर्मानुराग के नाम पर ही लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारी आंखों के सामने होने वाले हिंदू मुसलमानों के दंगे, सिया सुन्नियों के दंगे धर्मानुराग के ही परिणाम हैं। दूर क्यों जाते हो? दिगंबर श्वेतांबरों के झगड़े के पीछे भी तो यही धर्मानुराग कार्य करता है। भाई, अविवेक का भी कोई ठिकाना है? हम अहिंसा धर्म की भी रक्षा जान की बाजी लगाकर करना चाहते हैं। जान की बाजी लगाने से अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं होती है, हिंसा उत्पन्न होती है। आज हम इस स्थूल सत्य को भी भूले जा रहे हैं। भाई, धर्मानुराग धर्म का प्रकार नहीं, राग का प्रकार है। अतः धर्म नहीं, राग ही है। धर्म तो एक वीतराग भाव ही है। भाई, गजब हो गया है, वीतरागी जैन धर्म में भी आज राग को धर्म माना जाने लगा है। जब पानी में ही आग लग गई हो तब क्या किया जा सकता है? भगवान महावीर तो स्वयं वीतरागी थे, वे राग को धर्म कैसे कह सकते हैं? भाई, जब कोई वीतरागी बनता है तो संपूर्ण राग का अभाव करके ही बनता है, सबके प्रति राग तोड़कर ही बनता है। किसी के भी प्रति राग रखकर, कैसा भी राग रखकर वीतरागी नहीं बना जा सकता। भाई, सीधी सी बात है कि यदि वीतरागता धर्म है तो राग अधर्म होगा ही। इतनी सीधी सच्ची बात भी हमारी समझ में नहीं आती। भाई, पूर्वाग्रह छोड़े बिना यह बात समझ में नहीं आ सकती। भाई, मैं एक बात कहूं, बेटे तीन प्रकार के होते हैं, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आप चार व्यक्ति किसी काम से मेरे घर पधारे, मैंने आपको आदर पूर्वक बिठाते हुए अपने बेटे को आवाज दी, भाई परमात्मा प्रकाश, एक गिलास पानी लाना। आदत है ना एक गिलास बोलने की, पर चतुर बेटा समझता है कि भले ही एक गिलास कहा है पर अतिथि तो चार है ना, और एक पिताजी भी तो हैं। इस प्रकार वह पांच गिलास भरकर लाता है, साथ में एक भरा हुआ जग भी लाता है, क्योंकि वह जानता है कि गर्मियों के दिन हैं, कोई दो गिलास पानी भी पी सकता है। कोई दूध या चाय तो है नहीं जो मांगने में संकोच करेगा। दूसरा बच्चा वह है जो मात्र एक गिलास ही पानी लाता है, टोकने पर जवाब देता है कि आपने ही तो कहा था कि एक गिलास पानी लाना। बड़ा आज्ञाकारी है ना, जब एक गिलास कहा था तो अधिक कैसे ला सकता था। तीसरा वह है जो आधा गिलास पानी ही लाता है, पूछने पर उत्तर देता है, मैंने सोचा छलक ना जाए झलक ना जाए। भाई, हम सभी भगवान महावीर की संतान हैं। अब जरा विचार कीजिए कि हम भगवान महावीर के कौन से बेटे हैं, पहले, दूसरे या तीसरे? भगवान ने कहा था रागादि भाव हिंसा है। उनके इस कथन का आशय पहला बेटा यह समझता है कि सभी प्रकार के शुभाशुभ मंद तीव्र राग तो हिंसा है ही, साथ में द्वेषादि भाव भी हिंसा ही हैं। दूसरे बेटे वे हैं जो कहते हैं कि हम तो अकेले राग को ही हिंसा मानेंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से तो राग का ही उल्लेख है। उनसे यदि यह कहा जाए कि राग के साथ आदि शब्द का भी तो प्रयोग है, तो कहते हैं कि है तो, पर यह कैसे माना जाए कि आदि से द्वेषादि ही लेना सम्यक दर्शनादि नहीं। तीसरे वे हैं जो कहते हैं कि भगवान ने यदि राग को हिंसा कहा है तो हमने अशुभ राग तीव्र राग को हिंसा मान तो लिया, यह जरूरी थोड़े ही है कि हम संपूर्ण राग को हिंसा माने। लिखा भी तो अकेला रागादि ही है, यह कहां लिखा कि सभी रागादि हिंसा है। अब आप ही निश्चित कीजिए कि आप भगवान महावीर के कौन से पुत्र हैं, पहले, दूसरे या तीसरे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, यह निर्णय मैं आप सब पर ही छोड़ता हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर ने हिंसा और अहिंसा के स्वरूप के स्पष्टीकरण में राग शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया है। सभी प्रकार का राग तो उसमें समाहित है ही, राग के ही प्रकारांतर द्वेषादि परिणाम भी उसमें समाहित हैं। यहां एक प्रश्न संभव है कि क्या रागादि भाव की उत्पत्ति मात्र से ही हिंसा हो जाती है, चाहे जीव मरे या ना मरे? क्या जीवों के मरण से हिंसा का कोई संबंध नहीं है? हां भाई, बात तो ऐसी ही है, पर जगत तो यही कहता है कि जब तक प्राणियों का घात ना हो, जीवों का मरण ना हो, तब तक हिंसा कैसे हो सकती है, तब तक हिंसा की उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती है? यह भोला जगत तो हिंसा का संबंध मृत्यु से ही जोड़ता है, परंतु गंभीरता से विचार करें तो बात दूसरी ही नजर आती है। यदि जीवों के मरण को हिंसा माना जाएगा तो फिर जन्म को अहिंसा मानना होगा, क्योंकि हिंसा और अहिंसा के समान जन्म और मृत्यु भी परस्पर विरोधी भाव हैं। जन्म को अहिंसा और मरण को हिंसा मानने पर यह बात स्वतः समाप्त हो जाती है कि आज जगत में हिंसा अधिक फैलती जा रही है, क्योंकि जन्म और मृत्यु का अनुपात तो सदा समान ही रहता है। जो जन्मता है वही तो मरता है, तथा जो मरता है वह तत्काल कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। इससे बचने के लिए यदि कोई कहे कि मृत्यु का विरोधी जन्म नहीं जीवन है, तो बात और भी अधिक जटिल हो जाएगी, उलझ जाएगी, क्योंकि व्यक्ति जिंदा तो वर्षों तक रहता है और मरण तो क्षणिक अवस्था का ही नाम है। इस प्रकार मृत्यु को हिंसा और जीवन को अहिंसा मानने पर अहिंसा का पलड़ा और भी अधिक भारी हो जाएगा, जबकि यह बात सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि आज हिंसा बहुत बढ़ती जा रही है। भाई, न जन्म अहिंसा है, न जीवन अहिंसा है, और न मृत्यु हिंसा है। मृत्यु तो प्राणधारियों का सहज स्वभाव है, मरणम प्रकृति शरीर नाम। वह हिंसा कैसे हो सकती है? लोक में हिंसक भाव के बिना हुई मृत्यु को हिंसा कहा भी नहीं जाता है। बाढ़ आने पर लाखों लोगों के मर जाने पर भी यह तो कहा जाता है कि भयंकर विनाश हुआ, बर्बादी हुई, जन धन की अपार हानि हुई, परंतु यह कभी नहीं कहा जाता कि हिंसा का तांडव नृत्य हुआ। पर उपद्रवों को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा गोली चला जाने पर यदि एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि हिंसा का तांडव नृत्य हुआ। अखबारों के मुख पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में छपता है, जनता गली गली में नारे लगाती है कि हत्यारी सरकार इस्तीफा दे। बाढ़ में हुए विनाश पर सरकार को कोई हत्यारा नहीं कहता। भारतीय जनता इस तथ्य से भली भांति परिचित है, उसके रोम रोम में यह सत्य समाया हुआ है, उसके अंतर में अहिंसा के प्रति एक गहरी आस्था आज भी विद्यमान है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भोपाल की गैस दुर्घटना में हजारों लोगों के मर जाने के बाद भी वहां शासक दल ने दो तिहाई से भी अधिक बहुमत प्राप्त किया, किंतु राजस्थान में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति के मर जाने पर मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी की अमानुषिक हत्या पर जनता की यही प्रतिक्रिया रही। भारतीय जनता ने उनकी अमानुषिक हत्या अर्थात हिंसा के विरुद्ध चुनाव में अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया। परिणाम स्वरूप इंदिरा कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई। इस सत्य से सभी भली भांति परिचित हैं कि यदि श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव लड़ती तो इतना बहुमत उन्हें भी मिलने वाला नहीं था। वस्तुतः यह इंदिरा कांग्रेस या श्री राजीव गांधी की जीत नहीं, हिंसा के विरुद्ध अहिंसा की जीत है। भारतीय जनता ने स्पष्ट रूप से हिंसा के विरुद्ध अहिंसा के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है। इससे प्रतीत होता है कि बहुत गहराई में जाकर भारतीय जनता आज भी भगवती अहिंसा की आराधक है। उसकी रग रग में भगवती अहिंसा उसी प्रकार समाई हुई है जिस प्रकार तिल में तेल और दूध में घी। प्राकृतिक विनाश भारतीय जनता के चित्त को करुणा विगलित तो करता है, उसमें एक संवेदना पैदा तो करता है, पर वह उसके चित्त को उद्वेलित नहीं करता, आंदोलित नहीं करता, किंतु बुद्धिपूर्वक की गई हिंसा से वह आंदोलित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है, वह भड़क उठता है। हत्यारों के प्रति यह आक्रोश भारतीय जनता की अहिंसा में गहरी आस्था को ही व्यक्त करता है। भारतीय जनता की अहिंसा के प्रति गहरी समझ एवं दृढ़ आस्था को समझने के लिए हमें उसके अंतर में उतरना होगा, उसके व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करना होगा। ऊपर ऊपर से देखने से काम नहीं चलेगा। भगवान महावीर भारतीय जनता के अंतर में समाहित हो गए हैं। भारतीय जनता पर उनकी पकड़ बहुत गहरी है। भाई, मृत्यु विनाश हो सकती है, हत्या नहीं, हिंसा नहीं। सरकारी कानून भी इस बात को स्वीकार करता है। किसी व्यक्ति ने किसी को जान से मारने के इरादे से गोली चला दी, पर भाग्य से यदि वह ना मरे, बच भी जाए, तथापि गोली मारने वाला तो हत्यारा हो ही जाता है, पर बचाने के अभिप्राय से ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से चाहे मरीज ऑपरेशन की टेबल पर ही क्यों ना मर जाए, पर डॉक्टर हत्यारा नहीं कहा जाता, नहीं माना जाता। यदि मृत्यु को ही हिंसा माना जाएगा तो फिर डॉक्टर को हिंसक तथा मारने के इरादे से गोली चलाने वाले को हिंस व्यक्ति के न मरने पर अहिंसक मानना होगा, जो ना तो उचित ही है और ना उसे अहिंसक माना ही जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि हिंसा का संबंध मृत्यु के होने या न होने से नहीं है, हिंसक भावों के सद्भाव से है। मान लो मैं किसी स्थान पर इसी प्रकार व्याख्यान दे रहा हूं। सामने से किसी ने पत्थर मारा, वह पत्थर मेरे कान के पास से सनसनाता हुआ निकल गया। मैंने उससे कहा, भाई यह क्या करते हो, अभी मेरा माथा फूट जाता तो? वह अकड़कर कहने लगा, फूटा तो नहीं, फूट जाता तब कहते। मैंने समझाते हुए कहा, भाई तब क्या कहते, तब तो अस्पताल भागते। भाई, अज्ञानी समझते हैं कि हिंसा तब होती जब माथा फूट जाता, पर मैं आपसे ही पूछता हूं कि क्या हिंसा मेरे माथे में भरी है जो उसके फूटने पर निकलती? हिंसा मेरे माथे में उत्पन्न होनी थी या उसके हृदय में उत्पन्न हो गई है? हिंसा तो उसके हृदय में उसी समय उत्पन्न हो गई थी जब उसने मारने के लिए पत्थर उठाया ही था। हिंसा की उत्पत्ति हिंसक के हृदय में होती है, हिंसक की आत्मा में होती है, हिंस में नहीं। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हत्या के माध्यम से उत्पन्न मृत्यु को द्रव्य हिंसा कहा जाता है, पर सहज मृत्यु को तो द्रव्य हिंसा भी नहीं कहा जाता। भाव हिंसा पूर्वक हुआ परघात ही द्रव्य हिंसा माना जाता है। भाव हिंसा के बिना किसी भी प्रकार की मृत्यु द्रव्य हिंसा नाम नहीं पाती। जब कोई व्यक्ति हिंसा का निषेध करता है, हिंसा के विरुद्ध बात करता है, तो उसके अभिप्राय में भाव हिंसा ही अपेक्षित होती है, क्योंकि अहिंसक जगत में मृत्यु का नहीं, हत्याओं का अभाव ही अपेक्षित रहता है। भाई, यहां तो इससे भी बहुत आगे की बात है। यहां मात्र मारने के भाव को ही हिंसा नहीं कहा जा रहा है, अपितु सभी प्रकार के राग भाव को हिंसा बताया जा रहा है, जिसमें बचाने का भाव भी सम्मिलित है। इसके संदर्भ में विशेष जानने के लिए लेखक का अहिंसा नामक निबंध पढ़ना चाहिए। भाई, दूसरों को मारने या बचाने का भाव उसके सहज जीवन में हस्तक्षेप है। सर्व प्रभुता संपन्न इस जगत में पर के जीवन मरण में हस्तक्षेप करना अहिंसा कैसे माना जा सकता है? अनाक्रमण के समान अहस्तक्षेप की भावना भी अहिंसा में पूरी तरह समाहित है। यदि दूसरों पर आक्रमण हिंसा है, तो उसके कार्यों में हस्तक्षेप भी हिंसा ही है। उसकी सर्व प्रभुता संपन्नता का अनादर है, अपमान है। भगवान महावीर के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वयं सर्व प्रभुता संपन्न द्रव्य है। अपने भले बुरे का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उसका है। उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं है। इस परम सत्य की स्वीकृति ही भगवती अहिंसा की सच्ची आराधना है। भगवती अहिंसा भगवान महावीर की साधना की चरम उपलब्धि है। उनकी पावन दिव्य ध्वनि का नवनीत है, जन्म मरण का अभाव करने वाला रसायन है, परम अमृत है। भाई, यदि सुखी होना है तो इस परमामृत रस का पान करो, इस परम रसायन का सेवन करो। जब हम इस परमामृत पान की पावन प्रेरणा देते हैं, तो कुछ लोग कहने लगते हैं, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर अकेले हमारे अहिंसक हो जाने से क्या होने वाला है, क्योंकि अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता। अतः पहले सारी दुनिया को यह अहिंसा समझाओ, स्वीकार कराओ, बाद में हम भी स्वीकार कर लेंगे। हमारा उनसे कहना यह है कि भाई, अहिंसा तो अमृत है। जो इस अमृत के प्याले को पिएगा, वह अमर होगा, सुखी होगा, शांत होगा। भाई, इस पावन अहिंसा को यदि व्यक्ति अपनाएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, परिवार अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, समाज अपनाएगा तो समाज सुखी होगा, और देश अपनाएगा तो देश सुखी होगा। अतः दूसरों पर टालने की अपेक्षा भले काम को अपने घर से ही आरंभ कर देना चाहिए कि लोकोक्ति के अनुसार हमें अहिंसा को सच्चे दिल से समझने एवं जीवन में अपनाने का कार्य स्वयं से ही आरंभ कर देना चाहिए। अधिक क्या कहें भाई, सभी प्राणी भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित इस अहिंसा सिद्धांत को गहराई से समझें, मात्र समझें ही नहीं जीवन में अपनाएं, और सहज सुख शांति को प्राप्त करें। इस पावन भावना से विराम लेता हूं।